हो मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली
शांति। क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज का क्वेश्चन है, बाबा पूछते हैं सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ज्ञान और योग की परख होती है। ज्ञान सागर बाप आकर के आप हम सब बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं जिसके माध्यम से हम जीवन में कई प्रकार के खजाने जमा करते हैं। तो बाबा ने उन खजानों में से एक विशेष खजाना उसको याद किया है और बाबा ने पूछा कि वो कौन सा खजाना है जो आपके ज्ञान और योग को सिद्ध करता है कि आपने अपने जीवन में प्रैक्टिकल में ज्ञान और योग को अप्लाई किया है। तो उत्तर में क्या होगा, खुशी का खजाना। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। चाहे कितना भी ज्ञान हो योग हो लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो बाबा कहते हैं ज्ञान ठीक नहीं। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना है खुशी। तो जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हों परिस्थितियां हों लेकिन आपकी खुशी गायब नहीं हो सकती। इस ज्ञान और योग में इतनी पावर है। तो बाबा कहते हैं चाहे कितना भी योग हो लेकिन खुशी का अनुभव नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी को देखकर दूसरे आपसे पूछें कि आपको क्या मिला, बाबा ने कहा यह है ज्ञान और योग का प्रूफ या रिजल्ट या ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का आधार कि दूसरी आत्माएं आपको देख करके आपके खुशनुमा चेहरे को देख करके आपके जीवन को देख करके आपसे पूछें कि आपको क्या मिला। तो बाबा हमें, आप हम सब बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में अंडरस्टैंडिंग लाते हैं, समझ लाते हैं, और योग के माध्यम से हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं, अपने में पावर्स जमा करते हैं, और इन दोनों साधनों के माध्यम से हम अपने जीवन को खुशनुमा बनाते हैं। मानव जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, परिस्थितियां आती ही रहती हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए सभी प्रयास करते हैं। जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं जिनको एक आम व्यक्ति सॉल्व नहीं कर पाता है। उन समस्याओं के आते वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई कोई तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि किसी पेरेंट्स का, उनका इकलौता बेटा है, युवा है, और किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी विकट परिस्थिति में जो उसके माता पिता हैं उस समस्या को संभाल नहीं पाते हैं। उनके जीवन में जो भी खुशी थी, जो आशाएं थी, उम्मीदें थी, वो सब समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि बाबा के बच्चे, उनके जीवन में भी ऐसी समस्याएं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान की धारणा की हुई है, उनके पास योग का बल है। तो जब उनके जीवन में ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई परिस्थिति आई, उन्होंने उसको बहुत ही सुगमतापूर्वक, सहज भाव से सॉल्व किया, उन्होंने समस्या को स्वीकार किया कि जो आत्मा हमारे पास, हमारे घर में एक बेटे के रूप में थी, एक सहारे के रूप में थी, उस आत्मा का हमारे साथ इतने ही समय तक का पार्ट था। तो ये ज्ञान की कमाल है, ये ज्ञान की विशेषता है कि जीवन में आने वाली किसी भी समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जीवन में कोई भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं में आपकी खुशी गायब ना हो, क्योंकि आपकी खुशी अविनाशी खुशी है। अविनाशी बाप से प्राप्त हुआ यह खुशी का खजाना है। संसार में लोग खुशी को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के साधन अपनाते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। दुनिया में लोग खुशी के लिए धन एकत्रित करते हैं, सोचते हैं धन होगा तो खुशी होगी, जितना अधिक धन उतनी अधिक खुशी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई लोग साइंस के साधनों को एकत्रित करते हैं, सोचते हैं साधनों से खुशी मिलेगी, आजे तो संसार में लोग खुशी को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के साधन अपनाते हैं। संसार में कई प्रकार के ऐसे युक्तियां बनी हुई हैं, जैसे कि फेस्टिवल, कभी दिवाली, कभी होली, कभी ईद, तो कभी दशहरा। तो संसार में लोगों ने खुशी को बनाए रखने के लिए, खुशी को प्राप्त करने के लिए, खुशी को इमर्ज करने के लिए, और उसके माध्यम से अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए अनेक प्रकार के साधनों को बनाया तो है, उसको अप्लाई भी करते हैं, लेकिन संसार में जो भी साधन बने हुए हैं वो सभी साधन टेम्परेरी हैं, अल्पकालीन हैं, क्षणिक हैं। आज देखेंगे किसी के चेहरे पर खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियों में कोई गदगद हो रहा होगा, और अगले दिन देखेंगे तो उसके चेहरे पर मायूसी होगी, उदासी होगी, निराशा होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास जो भी खुशी के साधन हैं वो सभी साधन टेम्परेरी हैं, अल्पकालीन हैं। लेकिन बाबा ने आप हम सभी को अविनाशी साधन प्रदान किए हैं, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में अविनाशी खुशी को प्राप्त करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, संभाल के रखते हैं और समय पर उसको यूज भी करते हैं। कहते हैं कि खुशी सबसे अमूल्य खजाना है, निधि है। खुशी जैसी खुराक नहीं, जिसके पास खुशी है उसके पास बाकी सभी खजाने अवश्य ही होंगे। तो खुशी जो है वो मानव मन के लिए एक खुराक है, एक टॉनिक है, जिस खुशी के माध्यम से मनुष्य का मन शक्तिशाली बन जाता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि जीवन में स्वस्थ रहने के लिए एक फॉर्मूला को अप्लाई करो। कहते हैं कि एक गुना रोटी, दो गुना सब्जी, तीन गुना पानी, चार गुना खुशी का सेवन करो, तो आप जीवन में सदा स्वस्थ रहेंगे, एवर हेल्दी रहेंगे। तो खुशी का मानव जीवन में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो आज आप हम सभी देखेंगे कि बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए, खुशी की प्राप्ति के लिए, खुशी को कायम रखने के लिए ऐसे कौन कौन से साधन, कौन कौन सी विधि, कौन कौन से फॉर्मूले बताए हैं, जिनको हम जीवन में अप्लाई करते हुए अपने जीवन में अविनाशी खुशी को हम कायम रख सकते हैं। तो ऐसे हम लगभग 16 बातें, खुशी के 16 सूत्र या खुशनुमा जीवन के 16 सूत्र पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली विधि, पहला सूत्र है स्मृति, श्रेष्ठ स्मृतियां। मानव जीवन का सारा खेल स्मृतियों पर निर्भर करता है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। यदि हमारे मन में, बुद्धि में पुरानी स्मृतियां इमर्ज हैं, पास्ट में बीती हुई बातों की स्मृतियां इमर्ज हैं, किसी ने कुछ कहा वो हमारे मन पर हावी है और बार बार मन में वो इमर्ज होती रहती है, तो इससे मन में फिर उदासी, मायूसी, निराशा, हताशा, ये सारी बातें इमर्ज होंगी। तो जहां इनमें से कोई भी बात हमारे मन पर इमर्ज होगी वहां खुशी नहीं रह सकती है। इसलिए बाबा ने इस संसार में आकर के सबसे पहले आप हम सभी को श्रेष्ठ स्मृतियां याद दिलाई हैं। तो बाबा ने सबसे पहले हमें स्वस्वरूप की स्मृति दिलाई कि आप स्वयं कौन हो, आपकी विशेषता क्या है, आपके पावर्स कौन कौन हैं, आपके समान क्या क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, आप रहने वाले कहां के हैं, आपका इस संसार में वर्तमान समय क्या पार्ट है। तो बाबा ने हमें आकर के श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई हैं, स्वस्वरूप की स्मृति, स्वदेश की स्मृति, स्वलक्ष्य की स्मृति, स्वलक्षण की स्मृति, श्रेष्ठ समान की स्मृति, श्रेष्ठ कर्तव्यों की स्मृति और स्वधर्म की स्मृति। तो बाबा ने हमें जो भी श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई हैं, उन श्रेष्ठ स्मृतियों को हम बार बार इमर्ज करते हैं, उन स्मृतियों में हम बार बार रमण करते हैं, तो उससे हमारी खुशी बढ़ती रहेगी। बाबा ने कहा कि ज्ञान है अर्थात आपकी खुशी बढ़नी चाहिए। तो जितना हम इन श्रेष्ठ स्मृतियों में रमण करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उतनी हमारी खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। साथ साथ जीवन में आने वाले कई समस्याओं को हम सहज ही फेस कर सकेंगे। तो पहला फॉर्मूला है श्रेष्ठ स्मृतियां। दूसरा सूत्र है अटेनमेंट्स, प्राप्तियां। तो इस संगम युग पर इस ब्राह्मण जीवन में हमें क्या क्या मिला है वो हमारी बुद्धि में हमेशा इमर्ज रहने चाहिए। कौन मिला, उससे हमें क्या क्या मिला और कितना मिला, कितनी प्राप्तियां हुई हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प से जिसको पाने के लिए, जिससे मिलने के लिए, जिसके साथ वार्तालाप करने के लिए हम सभी ने अनेक प्रकार के प्रयास किए होंगे, अनेक प्रकार की साधनाएं की होंगी, तपस्या की होगी, किसी ने राय दी होगी कि आप भगवान से, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको घर बार का संन्यास कर एकांत में जंगल में जा करके तपस्या करनी होगी। तो आप हम सभी ने उसको भी अप्लाई किया होगा। तो जिसको पाने के लिए हमने अनेक प्रकार के प्रयास किए, पुरुषार्थ किया, अभी वो हमें इस संगम युग के अनमोल समय में, इस सुनहरे समय में वो हमें प्राप्त हुआ है। जिसको पाने की हमारी आधा कल्प की आशाएं थी वो हमें मिला है। और सिर्फ भगवान ही नहीं मिला है, लेकिन वो अपने साथ ज्ञान के खजाने, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, वो सारी प्राप्तियां भी लेकर के आया हुआ है। तो हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में खुशी की कमाई के लिए, अपनी खुशी को अविनाशी बनाने के लिए, जो इस ब्राह्मण जीवन में प्राप्तियां हुई हैं, जो अटैनमेंट्स हैं, उन प्राप्तियों को हमें बार बार याद करते रहना है, उन प्राप्तियों को हमें बार बार रिफ्रेश करते रहना है। तो इससे हमारी अविनाशी खुशी की कमाई जमा होती रहेगी। तीसरा सूत्र है फॉर्च्यून, भाग्य। संसार में जब किसी को कोई तपस्वी या किसी ज्योतिषी के माध्यम से मालूम पड़ता है, जैसे कोई विद्यार्थी है, यदि उसको कोई उसके भविष्य के बारे में अवगत करा दे कि आप अपने कॉलेज में टॉप आने वाले हैं, तो उसके इस शब्द को सुनते ही उसके मन में खुशी के अंबार लग जाएगी। उसका आधा पुरुषार्थ तो इसी से हो जाएगा और उसके अंदर एक फेथ, एक विश्वास पैदा हो जाएगा। ये साकार बाबा के जीवन में हम देखते हैं, जब बाबा को अपने भविष्य के बारे में ज्ञात हुआ कि मैं भविष्य में मिचनू बनने वाला हूं, तो बाबा की 60 साल से अधिक की आयु होने के बाद भी बाबा एक छोटे से बच्चे की तरह खुशी में खगिया मारते थे। तो ये कैसे संभव कैसे हुआ? उनको अपने भविष्य के बारे में ज्ञात हुआ कि भविष्य में हमारा जो पद है कितना श्रेष्ठ है, भविष्य का हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। तो इस ब्राह्मण जीवन में आप हम सभी को जो भाग्य विधाता ने भाग्य प्रदान किए हैं, उन भाग्य को हमें बार बार याद करना है। बाबा कहते हैं कि आप बच्चों का इतना श्रेष्ठ भाग्य है, ये अमृत वेले आंख खुलते ही आपकी मुलाकात भगवान से होती है। तो जिसकी मुलाकात इतनी बड़ी सत्ता से हो रही हो, वो भी एकदम अर्ली मॉर्निंग, तो उसके भाग्य के तो क्या कहने। तो आप हम सभी का कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो अमृत वेले आंख खुलते ही सबसे पहली मुलाकात भगवान से होती है और स्वयं भगवान हम बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। तो ये हम सभी का श्रेष्ठ भाग्य है। भगवान परम शिक्षक बनकर के हमें कितनी सुंदर, कितनी श्रेष्ठ, कितनी विशेष पढ़ाई पढ़ाते हैं। सारा दिन हम जो भी कार्य व्यवहार करते हैं, वो सब कुछ करते हुए हम उसमें भगवान के साथ का अनुभव करते हैं, भगवान की मदद का अनुभव करते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमें जो श्रेष्ठ भाग्य मिले हैं, उन श्रेष्ठ भाग्य को हम याद रखें, उसको यूज करें, भगवान हमें मिला है तो भगवान को हम यूज करें। बाबा कहते हैं कि मुझे यूज करो। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परिस्थिति हो, आई हो, उस समय आप मेरा आह्वान करो, मुझे यूज करो और फिर उसकी रिजल्ट देखो क्या होता है। तो भगवान जो हमें सर्व संबंधों से प्राप्त हुआ है वो हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। तो हम बार बार अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को याद करते रहें। यह ब्राह्मण जीवन में और भी जो श्रेष्ठ भाग्य मिले हैं। तो तीसरा सूत्र है खुशी के लिए, खुशनुमा जीवन के लिए अपना श्रेष्ठ भाग्य याद करते रहें। चौथा सूत्र है डोनेशन, दान पुण्य। बाबा ने लास्ट संडे के मुरली में एक विशेष टॉपिक पर चर्चा की थी। वो कौन सी पॉइंट थी? अखंड महादानी बनो। और बाबा ने कहा कि संसार की आत्माएं जो परेशान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, उन आत्माओं को खुशी का दान देना ये सबसे बड़ा दान है। तो आपका अखंड लंगर चलता रहे। बाबा ने कहा कि आप किसी भी आत्मा को खुशी का दान देंगे तो उससे आपको दुआएं मिलेंगी, आपको वो बार बार आपके लिए शुक्रिया अदा करेंगे, आपको थैंक्स देंगे, धन्यवाद देंगे। तो बाबा ने उसके लिए कहा कि आपको हर कर्म और हर कर्मेंद्रिय से दूसरों को दान देना है। मस्तक से क्या दान देंगे? स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। मस्तक से उन आत्माओं को, संसार की आत्माओं को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नयनों से स्वदेश और स्वराज की स्मृति दिलाओ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका अपना स्वराज कौन सा था। उनको उसका रास्ता दिखाओ। तीसरा, मुख से रचता और रचना के ज्ञान के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने का वरदान दो। चौथा, हाथों से कर्मयोगी सहज योगी बनने का वरदान दो। पांचवा, कदमों से फॉलो फॉदर कर कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का उनको वरदान दो। तो बाबा ने कहा कि संसार की आत्माओं को आप अपने कर्म इंद्रियों से और कर्मों से जितना उनको आप ये दान देंगे तो उनके जीवन में खुशियां आएंगी। और जितनी आत्माओं को आप खुशियां प्रदान करेंगे, उनके जीवन को खुशनुमा बनाएंगे, तो उतनी उन आत्माओं से आपको दुआएं मिलेंगी, आशीर्वादें मिलेंगी, और वो दुआएं आपके जीवन में आपकी खुशी को बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपकी अविनाशी खुशी बढ़ती रहेगी, जमा होती रहेगी। तो चौथा फॉर्मूला है अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए, अविनाशी खुशी की प्राप्ति के लिए, उस खुशी को जमा करने के लिए कि जो हमारे पास खजाने हैं, जो भगवान से प्राप्त हुए हमें, जो हमारे पास खजाने हैं, उन खजानों को हम संसार की अन्य आत्माओं को डोनेट करें, उनको दान करें। अगला सूत्र है इनकम, कमाई। बाबा कहते हैं जहां कमाई होती है वहां खुशियां होती है। जिसकी बहुत कमाई होती है, अगर यदि किसी के पास कोई रात्रि के समय लेट, टू लेट कोई ग्राहक आता है और उसके उससे कमाई होती है तो रात को उसकी नींद भी फिट जाती है। तो कमाई के लिए हमने लास्ट टॉपिक में चर्चा की थी कि कमाई कैसे, कौन कौन से साधन है। यदि उन साधनों को हम यूज करते हैं तो दिन प्रतिदिन हमारी अविनाशी कमाई जमा होगी और जितनी अविनाशी कमाई जमा होती रहेगी उतनी हमारी खुशियां बढ़ती रहेंगी। तो वो कौन कौन से साधन थे? सबसे पहले याद। बाबा का याद ही कमाई का साधन है, याद ही कमाई है। कदम कदम पर आप बाप की याद में हैं तो आप कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट थी याद, सेकंड पॉइंट पढ़ाई, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। तो जितना भगवान की पढ़ाई लगन से पढ़ते हैं, भगवान जो हमें ज्ञान रत्न देते हैं उनको अपने बुद्धि में हम जमा करते हैं, तो उसके माध्यम से हमारी अविनाशी कमाई जमा होती रहती है। तीसरा था मनन चिंतन, ज्ञान रत्नों का चिंतन करना, उसको जीवन में धारण करना। जब हम ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करते हैं तो समय आने पर उनको हम जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और उसके माध्यम से हमारी कमाई होती है। चौथा था दान, डोनेशन। पांचवा विशेषताएं, अगला साधन, स्थान, फिर साधन, संतुष्टता, संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो, फिर अगला पॉइंट श्रेष्ठ पुरुषार्थ से दुआओं का खाता जमा करना और इकोनॉमी करना, दूसरी आत्माओं के तन मन धन को सफल कराना और सहयोग का नोट। तो ये अनेक प्रकार के खजाने हैं, इनसे हमारी कमाई जमा होती है। तो बाबा ने कहा कि जो इस ब्राह्मण जीवन में आपको खजाने मिले हैं, इन खजानों के माध्यम से आप जितनी कमाई जमा करेंगे, जितनी आपकी कमाई बढ़ती जाएगी उतनी ही आपकी खुशी बढ़ती जाएगी, आपके खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। तो हमें अपनी खुशी की कमाई के लिए, अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के जो इनकम बाबा ने हमें बताई है, श्रेष्ठ भाग लिखने के लिए श्रेष्ठ कलम दिए, उससे अपनी कमाई को जमा करते रहना है। अगली पॉइंट है जर्नी, यात्रा। संसार में लोग जब अपने कार्य व्यवहार में बहुत व्यस्त रहते हैं, जब उनके मन पर बहुत सारा बोझ हावी होने लगता है, तो उसके लिए वो उससे रिलीज होने के लिए, अपने मन को उससे हल्का करने के लिए एक युक्ति अपनाते हैं कि वो थोड़ा समय के लिए अपने कारोबार से फ्री होकर के कहीं यात्रा पर जाते हैं, टूर पर जाते हैं, और वहां जाकर के वो खुशियां मना करके आते हैं। लेकिन संसार में जो खुशियां प्राप्त होती हैं वो सब टेम्परेरी होती हैं, जब तक बाहर हैं तब तक खुशियां, और जैसे ही वापस अपने स्थान पर आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, अपने कारोबार में आते हैं, तो पुनः फिर से वही समस्याएं, वही परिस्थितियां, वही टकराव, मनमुटाव फिर से हावी होने लगता है। तो वहां जो खुशियां प्राप्त होती हैं वो स्थायी नहीं रहती हैं, थोड़े समय के लिए होती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपकी जो जर्नी है, जो आपकी यात्रा है, आपको इस यात्रा से जो आपको शक्ति मिलती है, जो आपको एक अनुभव होता है, वो अनुभव, वो शक्ति आपके जीवन में आगे के लिए खुशियां भर देती है। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं कि आप भी सेवा करते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, सारे कारोबार करते हैं, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी बीच बीच में समय निकाल करके हमें भी यात्रा करनी है, आध्यात्मिक यात्रा करना है, स्पिरिचुअल जर्नी करनी है। तो बाबा कहते हैं कि आप बीच बीच में समय निकाल करके कभी विश्व के टूर पर निकल जाओ, विश्व भ्रमण पर। कोई आपको देखे पूछे कहां जा रहे हो, तो क्या जवाब देंगे? वर्ल्ड टूर पर, बिना कोई वीजा के, बिना कोई पासपोर्ट के। तो बाबा ने कहा कि जो बार बार आपको यात्रा करनी है, रूहानी यात्रा करनी है, कभी वर्ल्ड टूर पर निकल जाना है, तो कभी तीनों लोकों की सैर करनी है, तो कभी आपको चार धाम की यात्रा करनी है, कभी सेवा केंद्रों की यात्रा करनी है, कभी 5 रूपों की ड्रिल। तो बाबा ने हमें जो अनेक प्रकार के यात्राएं बताई हुई है, हमें बीच बीच में उसको अवश्य ही करनी है, क्योंकि हम एक परिवार के साथ हैं, समाज के साथ हैं, हम कई आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं। और लंबे समय तक यदि हम किसी कारोबार में कोई भी कामकाज में व्यस्त रहते हैं तो वहां का जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो हमारे मन पर हावी होने लगता है। और मन पर यदि किसी प्रकार का कोई भी बोझ होगा तो मन कभी भी खुश नहीं होगा। मन की विशेषता है कि वो उसको हमेशा क्या चाहिए, नवीनता चाहिए, उसको अपने पर कोई बोझ नहीं चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए। तो उस फ्रीडम के लिए, उसको हल्का रखने के लिए हमें बीच बीच में और बार बार जर्नी करनी है, स्पिरिचुअल यात्रा करते रहना है। तो इसके माध्यम से हमारी अविनाशी खुशी बढ़ेगी, जमा होगी, क्योंकि जब भी हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, ये जर्नी करते हैं, तो आप देखेंगे जब आप जर्नी करके वापस लौटते हैं तो आपके मन में एक विशेष पावर होती है, और उस समय आप कई अलौकिक अनुभूतियां करके लौटते हैं जो आपके मन को शक्तिशाली बनाती हैं। इसलिए हमें बार बार ये स्पिरिचुअल जर्नी करते रहना है, उससे हमारा मन शक्तिशाली रहेगा, मन हल्का रहेगा और मन खुश रहेगा, उड़ता रहेगा। अगला सूत्र है एंटरटेनमेंट के साधनों को यूज करना। संसार में भी लोग खुशी के लिए एंटरटेनमेंट के साधनों को यूज करते हैं, अपने कारोबार से फ्री होकर के या बीच बीच में अपने धंधे से समय निकाल करके टीवी के सामने जाकर के बैठ जाते हैं। उनसे पूछो भाई क्यों, तो सोचते हैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, कोई मूवी देखेंगे, कोई नाटक देखेंगे, कोई न्यूज सुनते हैं, या जो उनमें अनेक प्रकार के जो मनुष्य के मन को खुशी देने वाले साधन होते हैं उनको देख करके वो अपने मन को खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो एंटरटेनमेंट के जो भी साधन हैं संसार में भी लोग उनको यूज करते हैं, जैसे कि टीवी है, कोई कहानियां हैं, कोई नाटक है। तो बाबा ने कहा कि आपके पास जो साधन है वो साधन अलौकिक हैं, दुनिया वाले जिन साधनों को यूज करते हैं वो साधन लौकिक हैं, विनाशी हैं, प्रकृति के साधन हैं, और प्रकृति के साधन अस्थाई होते हैं। आज आपकी टीवी चल रही है, घर में लाइट है तो आपके मन में खुशी, आप कोई सीरियल देख रहे हैं तो उस समय खुशी हो रही है, अचानक लाइट कट होती है तो खुशी भी गायब। तो बाबा ने कहा कि आपको इस संगम योगी ब्राह्मण जीवन में भगवान ने आपको अलौकिक साधन दिए हैं, उन अलौकिक साधनों को आप इस ब्राह्मण जीवन में अप्लाई कीजिएगा। बाबा कहते हैं जैसे बाप के पास बेहद की टीवी है, बहुत बड़ी टीवी है, तो बाबा कहते हैं मैं इस टीवी में सभी बच्चों के हर प्रकार की एक्टिविटी को देखता रहता हूं। तो इसी प्रकार से आप हम सभी बच्चों को, जैसे बाप टीवी देखते हैं, हमें भी कौन सी टीवी देखनी है, बेहद की टीवी देखनी है। उस बेहद की टीवी में क्या क्या देखना है, स्वर के सीन देखने हैं, और जो 5000 वर्ष की जो रील है, जो फिल्म है, उस फिल्म को देखना है कि उस फिल्म में कौन कौन हीरो एक्टर हैं, कौन कौन उसमें विलन है और किस किस का उसमें साधारण पार्ट है। साथ साथ उसमें अपने रोल को भी देखना है कि हमारा उसमें क्या रोल है, विलन का हमारा रोल है कि हीरो का है या हमारा कोई साधारण पार्ट है। हाँ, लेकिन हमें यह टीवी हमेशा साक्षी होकर के देखनी है। तो बाबा ने कहा कि बाप ने आपको ऐसी बेहद की टीवी दी है, दिव्य बुद्धि की टीवी, उसके माध्यम से अपने 5000 वर्ष के पाठ को देख सकते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि बेहद की कहानी 84 बर्थ की जो कहानी है, स्टोरी है, उस कहानी को आप याद करो तो उससे आपको खुशी होगी। और कौन कौन से साधन है? सीढ़ी, बार बार सीढ़ी चढ़ो और उतरो, इससे क्या होगा? शरीर पन की एक्सरसाइज करो तो इससे हमारी खुशी बढ़ेगी, व्यर्थ से मुक्त रहने का परहेज। तो जो भी बाबा ने कहा खुशियों के झूले झूलो, बाबा ने आपको झूले दिए हुए, उन झूलों की रस्सी क्या है? उमंग और उत्साह, ये उसकी रस्सी है। इस रस्सी के माध्यम से झूले झूलेंगे तो आपकी खुशी बढ़ती रहेगी। याद और सेवा, याद और सेवा के झूले में झूलेंगे तो आपकी खुशी बढ़ती रहेगी। तो खुशी के जो भी साधन हैं, जो भगवान ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में अलौकिक साधन दिए हैं, उन साधनों के माध्यम से हम अपनी अविनाशी खुशी को बढ़ा सकते हैं, जमा कर सकते हैं, उनको हम कायम रख सकते हैं। अगला साधन है फैशन। संसार में लोग खुशियों के लिए नए नए फैशन को यूज करते हैं, अपनाते हैं। जैसे ही कोई नया फैशन निकलता है तो उसको अप्लाई करते हैं, नए नए प्रकार के वस्त्र, नए नए डिजाइन के, नए नए हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल। तो संसार में अनेक प्रकार के जो फैशन है, नए नए आभूषण, संसार की आत्माएं उन फैशन्स में खुशी को खोजती हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि मैंने आप बच्चों को जो फैशन, जो आभूषण दिए हैं, जो वस्त्र दिए हैं, वो यूनिक हैं, विशेष हैं। तो आपको उन आभूषणों को, उन वस्त्रों को अप्लाई करना है, उनको यूज करना है। बाबा ने हमें अनेक प्रकार के ड्रेसेस दिए हैं, फरिश्ते स्वरूप की ड्रेस, लाइट की ड्रेस, चमकीली ड्रेस, सत्युगी ड्रेस, हल्की ड्रेस। तो बाबा ने जो हमें अनेक प्रकार की ड्रेसेस दी हुई हैं, उनको हमें बार बार पहनना है, उनको यूज करना है। साथ साथ बाबा ने जो हमें आभूषण दिए हैं, ज्ञान के आभूषण, ज्ञान रत्नों के आभूषण, गुणों के आभूषण, शक्तियों के आभूषण, विशेषताओं के आभूषण, तो जितना जितना हम अलंकार दिए, जितना जितना हम इन जो अलौकिक जो फैशन है उसको करते रहेंगे, उतनी हमारी खुशी बढ़ती रहेगी। 16 श्रृंगार, तो बाबा ने कहा 16 श्रृंगार करेंगे तो आप सजे हुए दिखाई देंगे, आपकी सूरत और मूरत में खुशी झलकेगी। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें जो फैशन के लिए अनेक प्रकार के साधन दिए हैं, उनको हमें अप्लाई करके अपने जीवन में खुशी को जमा करना है। अगला फॉर्मूला है गिफ्ट। गिफ्ट, संसार में जब कोई किसी को कोई गिफ्ट देता है तो उस गिफ्ट के साथ साथ उसका प्यार भी होता है। उसके माध्यम से जिसको गिफ्ट प्राप्त होती है उसे खुशी होती है। इस संसार में जो गिफ्ट देते हैं वो टेम्पररी होती है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 1 मास, उसके बाद वो खत्म। लेकिन बाबा ने हमें जो गिफ्ट प्रदान की है वो हमारी गिफ्ट भी अविनाशी है। और बाबा ने कल की साकार मूल्य में एक विशेष बात कही थी कि बाप आकर आप बच्चों को लॉटरी देते हैं, लॉटरी। तो भगवान हमें जो गिफ्ट देते हैं या लॉटरी देते हैं वो हमारी अविनाशी है। बाबा ने हमें गिफ्ट में स्वर्ग की बादशाही दी। तो बाबा कहते हैं बार बार उस गिफ्ट को देखते रहो, जितना आप उस गिफ्ट को देखेंगे, उसको यूज करेंगे, उतनी आपकी खुशी बढ़ती रहेगी। तो हमें देखना है कि इस ब्राह्मण जीवन में भगवान ने हमें कौन कौन सी गिफ्ट या कौन कौन सी लॉटरी दी हुई है। तो बाबा ने हमें कौन कौन सी गिफ्ट दी है? स्वमान की गिफ्ट। स्वमान की गिफ्ट है लिफ्ट की गिफ्ट। बाबा ने कोई मुरली में कहा था कि बाप ने आपको लिफ्ट की गिफ्ट दी है। जिस लिफ्ट की गिफ्ट में बैठ करके आप, जिस लिफ्ट में बैठ करके आप तीन लोगों की सैर कर सकते हैं, जहां चाहे वहां उसके माध्यम से आप जा सकते हैं। तो बाबा ने जो हमें अनेक प्रकार की गिफ्ट दी है, जैसे लिफ्ट की गिफ्ट है, ब्राह्मण जीवन ही गिफ्ट है। तो इस गिफ्ट को जितना हम यूज करेंगे, उसको हम याद करेंगे, उतनी हमारी खुशी बढ़ती रहेगी। डिवाइन इंटेलेक्ट की गिफ्ट, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट, दिव्य नेत्र। तो बाबा ने जितने भी हमें गिफ्ट दिए हैं या लॉटरी दिए हैं, उनको हमें बार बार याद करना है और उसको यूज करना है। इससे हमारी अविनाशी खुशी बढ़ती रहेगी। अगली पॉइंट है रेस्पेक्ट। बाबा कहते हैं संसार में आत्माएं जब किसी को रेस्पेक्ट देती हैं, तो उनका वो रेस्पेक्ट देने का जो समय होता है बहुत थोड़ा होता है। आज किसी को मान देंगे तो कल उसका अपमान भी करने में वो देरी नहीं करते हैं। वो संसार की आत्माओं को लंगड़ा मान देते हैं। लेकिन भगवान ने हमें जो रेस्पेक्ट दिया है, जो मान दिया है, वो हमारा स्थाई है। तो बाबा हमें कौन कौन सा मान देते हैं? तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, मेरे नूर रत्न हो, मस्तक की मणि हो, मेरे सिर के ताज हो, और तुम मेरे से भी ऊंचे हो। तुम बच्चे डबल डबल विश्व के मालिक बनते हो। बाप तो परम धाम का मालिक, और तुम बच्चे परम धाम के भी मालिक बनते हो और सत्यों के भी मालिक बनते हो। आप बच्चों की डबल पूजा होती है, हमारी तो सिंगल पूजा होती है। तो बाबा ने जो हमें अनेक प्रकार के सम्मान दिए हैं, भगवान ने जो हमें रेस्पेक्ट दिया है, उस रेस्पेक्ट को हमें कायम रखना है, उसके नशे में रहना है। हाँ जी, हाँ, स्वयं भगवान हमें नमस्ते करते हैं। कितने नशे की बात है, हर दिन मीठे मीठे बच्चे कहते हैं। तो भगवान हमें जो रेस्पेक्ट देते हैं, उस रेस्पेक्ट को हमें उसको महत्व देना है, उसके नशे में रहना है। तो इससे हमारी अविनाशी खुशी बढ़ती रहेगी। अगली पॉइंट है, अगला सूत्र है कि दूसरों से अपनी तुलना न करें, किसी से भी अपनी कंपैरिजन न करें। संसार में लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। किसी के पास कोई विशेष साधन होते हैं तो सोचेंगे कि उसके पास वो है, हमारे पास नहीं है। हाँ, तुलना माना तोलना, दूसरों के जो साधन होते हैं उनको और अपने पास जो अप्राप्तियां हैं, दूसरों की प्राप्तियों और अपनी अप्राप्तियों को तोलते हैं। तो ये खुशी को गायब करने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो बाबा ने कहा कि आपको किसी से तुलना नहीं करनी है। आपके पास जो प्राप्तियां हैं, जो आपके पास खजाने हैं, जो आपके पास साधन है, वो इतने हैं, इतने विशेष हैं, जो संसार में किसी भी आत्मा के पास नहीं है। आपके पास अपना एक स्वस्थ तन है, शक्तिशाली मन है, दिव्य बुद्धि है, जिस बुद्धि से आपने भगवान को जाना पहचाना। तो आपके पास कितनी श्रेष्ठ बुद्धि है। तो आपके पास जो कुछ भी, जो भी खजाने हैं, जो प्राप्तियां हैं, उनके नशे में रहो, उसका सुख लो। दूसरी आत्माओं से अपनी बार बार तुलना करके अपनी खुशी को गंवाना नहीं है। तो 11वीं पॉइंट है कि दूसरों से तुलना ना करें। जब भी तुलना करेंगे तो हमारी खुशी गायब होगी। तो अपनी खुशी को मेंटेन करने के लिए, अपनी खुशी को कायम रखने के लिए किसी से भी हमें अपनी तुलना नहीं करनी है। हमें भगवान से जो प्राप्तियां हुई हैं, जो हमारे पास खजाना है, हमें उसको बार बार याद करते रहना है। अगली पॉइंट है, वर्तमान में जिए। संसार में लोगों की एक मानसिकता होती है कि वो या तो पास्ट में रहेंगे या फिर फ्यूचर में, वर्तमान में, वर्तमान का जीवन नहीं जीते हैं। लेकिन बाबा हमें सिखाते हैं कि आपको वर्तमान जीवन का सुख लेना है, तो वर्तमान समय जीवन, वर्तमान जीवन को आप यदि आप श्रेष्ठ रूप में जिएंगे तो आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। तो हमेशा वर्तमान में रहना, वर्तमान का सुख लेना, वर्तमान में जो प्राप्तियां हो रही हैं उन प्राप्तियों को अनुभव करना। तो जो आत्माएं वर्तमान में जीते हैं उनके जीवन में स्थायी खुशियां रहती है। अगली पॉइंट है, पास्ट का चिंतन और फ्यूचर का चिंता, इन दोनों से अपने आप को बचा के रखना है। पास्ट नहीं, मुक्त नहीं, पास्ट के चिंतन से, पास्ट के व्यस्त चिंतन से, उससे मुक्त रहना है। पास्ट में हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटी, किसी ने अपशब्द बोल दिए, कुछ असफलता मिली, तो उसको हम अभी वर्तमान समय अपने साथ लेकर के न चलें, बार बार उसके चिंतन में न रहे। यदि हम बार बार उसको चिंतन में लाएंगे तो जो हम खुशी की कमाई कर रहे हैं वो हमारी खुशी की कमाई समाप्त हो जाएगी, हमारी खुशी उड़ जाएगी। तो बाबा ने कहा कि पास्ट के चिंतन को अभी अपने मन पर हावी नहीं होने देना है, साथ साथ भविष्य की चिंता कि भविष्य में हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, या हमारे कारोबार का क्या होगा। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान को आप अच्छे से जिएंगे तो आपका भविष्य उज्ज्वल है, श्रेष्ठ है। तो पास्ट का चिंतन और भविष्य की चिंता, इससे अपने आप को मुक्त रखना है। अगला सूत्र है कि अपने जीवन में जो हमने जीवन में खुशियों के पल, खुशियों के क्षण अनुभव किए थे उनको बार बार याद करना। तो इस ब्राह्मण जीवन में, हम सभी के जीवन में ऐसे अनेक खुशियों के पल आए जिसने हमारे मन को बहुत गदगद किया था, तो उन खुशियों के पल को हमें अब इस ब्राह्मण जीवन में अभी पुनः बार बार उसको याद करते रहना है। तो जितना हम उन खुशियों के पल को याद करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, उतना हमारा खुशी का पारा चढ़ेगा, हमारी अविनाशी खुशी जमा होती रहेगी। अगली पॉइंट है गीत संगीत। बाबा कहते हैं कि जब कभी थोड़ी भी उदासी आए तो गीत संगीत के माध्यम से अपने आप को फिर से रिफ्रेश करो। संसार की आत्माएं भी गीत संगीत के माध्यम से अपने मन को खुश करती हैं, लेकिन बाबा ने जो हमें अलौकिक गीत दिए उन गीत के माध्यम से हमें अपने आप को बार बार रिफ्रेश करते रहना है। जैसे अभी हमने सुना कि हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, तो ऐसे जो हमारे अलौकिक गीत बने उन गीतों को बार बार हमें सुनना है, हो सके तो गीतों को लिखना है, गीतों को लिखना है, यदि हो सके तो उनको गाना भी है। यदि लिखना और गाना नहीं आता है तो सुनना तो हर एक को आता ही है। तो गीतों को सुन करके अपने मन में बार बार हमें खुशियों को लाना है, इससे हमारी खुशी जमा होती रहेगी। और लास्ट 16वें पॉइंट है एक्सरसाइज, तन और मन की एक्सरसाइज। तो बाबा कहते हैं कि जैसे आपको मन की एक्सरसाइज करनी है, उसी प्रकार से आपको तन को स्वस्थ रखने के लिए आपको तन की एक्सरसाइज भी करते रहना है। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमें अविनाशी खुशियों को इमर्ज करने के लिए, खुशी की कमाई के लिए, उस खुशी को जमा करने के लिए, खुशी को बढ़ाने के लिए हमें तन और मन दोनों की एक्सरसाइज करते रहना है, क्योंकि एक्सरसाइज से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, उसमें उनमें मोल्डिंग पावर रहती है, शक्तिशाली बनते हैं, समस्याओं को फेस करने की उनमें पावर बढ़ती है, उससे रिफ्रेशमेंट होती है, लचीलापन आता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमें तन और मन दोनों की एक्सरसाइज करते रहना है। तो एक खुशनुमा जीवन जीने के लिए ये 16 अलौकिक विशेष सूत्र हैं, खजाने हैं। इन खजानों को हम जीवन में अप्लाई करते हुए चलते चलेंगे तो हम अविनाशी खुशी को प्राप्त भी करते रहेंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे, उसको कायम रख सकेंगे और जीवन में ब्राह्मण जीवन के मौज लेते रहेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा था? श्रेष्ठ स्मृतियां। दूसरा प्राप्तियां, अटेनमेंट्स। तीसरा भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य। चौथा डोनेशन। पांचवा इनकम, इनकम करते रहना है। छठवा जर्नी, यात्रा, हमें बार बार विश्व भ्रमण पर निकल जाना है। अगला एंटरटेनमेंट के साधन, जो हमें इस ब्राह्मण जीवन में अलौकिक साधन प्राप्त हुए हैं उन साधनों को हमें यूज करना है। अगला फैशन। नेक्स्ट पॉइंट गिफ्ट, गिफ्ट और रेस्पेक्ट। अगला नो कंपैरिजन, किसी से कोई तुलना नहीं करनी है, जो हमें मिला है उसका सुख लेना है। अगले पॉइंट्स, वर्तमान में जिए, प्रेजेंट में जीना, प्रेजेंट का सुख लेना। अगले पॉइंट पास्ट और फ्यूचर के जो व्यर्थ चिंतन है उससे मुक्त रखना अपने आप को। अगले पॉइंट सुनहरी यादें, बीते हुए पलों की सुनहरी यादें। अगले पॉइंट गीत संगीत और लास्ट एक्सरसाइज। तो ये 16 सूत्र हैं, इनके माध्यम से हम अपने जीवन को खुशनुमा जीवन बना सकते हैं, ये खुशनुमा जीवन का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप ने आप बच्चों को सबसे बड़ा खजाना खुशी का खजाना दिया है और आपके ज्ञानी और योगी जीवन के जीवन का रिजल्ट है स्थायी खुशी, अविनाशी खुशी। तो उस खुशी को हमें हमेशा कायम रखना है। ओम शांति।
खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर نظر اب ہماری بے حد گگن